نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اپنے نماز نبوی کا ہم جو پڑھ رہے تھے، نماز کی فضیلت، اس میں ابھی ہم نے یہاں تک ہی پڑھا تھا کہ نماز کی کیا کیا فضائل ہیں، نماز میں کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو جن کا دھیان رکھنا چاہیے، اور ہم نے ابھی مختصر نہیں اس کا انٹروڈکشن ہی ابھی پڑھا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ ہم آہستہ آہستہ اس کو کور کرتے رہیں گے ہر کلاس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہمیت نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. یعنی آپ کا فرسٹ کوسچن قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. فرسٹ کوسچن کی تیاری ہے آپ کی، کہ فرسٹ کوسچن آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ پہلا سوال نماز کا ہے، تو یہی نہیں صرف ہوگا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بلکہ یہ بھی کوسچن ہوگا کہ وقت پہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کے اندر آپ کا خشوع و خضوع تھا یا نہیں تھا، سنت کے آپ نے طریقے پہ پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ سارے کوسچنز ہوں گے، یعنی نماز سے متعلق سارے سوال آپ سے کیے جائیں گے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا. یعنی جو آپ ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں نا، وقت پہ نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو اس کا ٹائم ہے اس کے ود ان نماز پڑھتے ہیں، اور اس کا افضل ترین وقت کون سا ہے؟ جو شروع کا وقت ہے، اذان ہوتے ہی جو ٹائم ہے نا، وہ افضل ترین ہے. اب دیکھیں، آپ خود ہی سوچیں، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو اسے یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کب میری اس سے ملاقات ہو. تو جو ہی اذان ہو، آپ کو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں فوراً سے اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں، اس سے ملاقات کر لوں. اب آپ کسی سفر سے جاتے ہیں، آپ پاکستان وغیرہ جاتے ہوں گے، تو آپ دیکھتے ہیں جو لوگ آپ کے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپ سے جن کو محبت ہوتی ہے، وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ہی لینے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دل کیا ہوتا ہے کہ ہم یہیں پہ ان سے ملاقات کر لیں، ان سے یہ بھی نہیں برداشت ہوتا کہ میں گھر پہ ویٹ کروں. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو گھر پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ گھر پہنچتے ہیں پھر ان سے ملتے ہیں. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ایک دو دن ویٹ کر لو، پھر اس کے بعد ملیں گے، وہ ایک دو دن بعد آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہی جب آپ آنے لگتے ہیں واپس، تو اس وقت وہ آپ سے ملتے ہیں. تو ڈفرینس تو ہوتا ہے نا، وہ جو انسان آخر میں آپ سے ملا، اور وہ ایک جو انسان جو ایئرپورٹ پہ آپ کو لینے آیا تھا، آپ کو فرق نہیں محسوس ہوتا؟ کہ یہی بات ہے کہ جو نماز اول وقت میں پڑھی جائے، تو آپ کو کتنا شوق ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، کہ جو ہی اذان ہوئی آپ دوڑ کے گئی ملنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ اس کے تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے، پھر کچھ اس سے تھوڑی اور دیر کر کے پڑھیں گے، اور پھر کچھ تو اس وقت پڑھیں گے جب بالکل نماز کا وقت جانے والا ہے، جب وہ رخصت ہونے والی ہے اس وقت کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے. تو اجر کم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، तो बेशक उसी टाइम फ्रेम में आपने पढ़ ली तो नमाज तो हो गई मगर अजर कम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। 3 बार ये आपने तकरार फरमाई, बार बार कहा। क्यों कहा बार बार? इसलिए कि जो बात अहम होती है ना उसको रिपीट किया जाता है। जैसे आप बच्चों को कहती हैं नहीं करो नहीं करो, बाज आ जाओ इससे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये ताकीद की है कि नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, यानी इसका जो क्वेश्चन है, इसके जो हिसाब किताब है, हमें डरना चाहिए कि जो हिसाब होगा क्या हम इसके हिसाब दे सकेंगे सही से या नहीं। सिर्फ अदा करने का नहीं, पूरा इसका हक अदा किया या नहीं। आपने फरमाया, आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज ही हायल है, यानी जो बैरियर है शिर्क के और किसी भी इंसान के ईमान के दरमियान, वो कौन सा है? नमाज, जो उनको एक दूसरे से अलग करती है। फिर आपको मालूम है कि नमाज तो पिलर भी है जिस पे आपकी इस्लाम की इमारत खड़ी हुई है, आपके दीन की इमारत खड़ी हुई है। अगर आप नमाज नहीं कायम करते तो अल्लाह ना करे इस हदीस की वजह से, जो ये मुस्लिम की हदीस है, वो इंसान शिर्क में भी गिरफ्तार हो सकता है फिर। क्योंकि यही है ना जो शिर्क और इंसान के दरमियान हायल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन जब अल्लाह ताला बाज़ दोजखियों पर रहमत करने का इरादा फरमाएगा तो फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो दोजख से ऐसे लोगों को बाहर निकाल लें जो अल्लाह की इबादत किया करते थे। फरिश्ते इन्हें सजदे के निशानों से पहचान के दोजख से निकालेंगे। सजदे की जगहों पर अल्लाह ताला ने दोजख को हराम कर दिया है, वहाँ आग का कुछ असर नहीं होगा। तो सजदे की जगह जो क्या हो गई, फायर प्रूफ हो गई, इनको आग नहीं छुएगी। अब आप खुद सोचें कि जो लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, एक तो ये गुनाह और बाकी भी गुनाह होंगे और जहन्नुम में पड़े होंगे, तो फरिश्ते उनको किस चीज़ से पहचानेंगे फिर? और फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगली हदीस में यही आता है कि सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ना है। बेस्ट आप जो काम कर सकते हैं, तो इन दिनों में भी जो आपके ये ज़िलहज के 10 दिन आए, तो आपने यही कोशिश करनी है कि मेरी नमाज अव्वल वक्त पे हो। और जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है, अल्लाह ताला पूरी तवज्जो उस पे कर देते हैं, अपनी रहमत उसके लिए कर देते हैं। तो जब भी कोई दुख तकलीफ हो, कोई ऐसी मुश्किल आए, परेशानी आए, तो नमाज के लिए खड़े हो जाएं। किस लिए? क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। और तहज्जुद की नमाज की फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बयान फरमाई कि मेरे पास जिब्राईल अलैहि सलाम आए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे कितना ही आप ज़िंदा रहें, आखिर एक दिन मरना है। इससे ये भी पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई, और उसी तरह आई जैसे बाकी इंसानों को आती है। और फरमाया जिब्राईल अलैहि सलाम ने, और जिससे चाहें जितनी मोहब्बत कर लें, आखिर एक दिन जुदा हो जाना है, और आप जैसा भी अमल करें उसका बदला ज़रूर मिलना। और उसमें कोई शक नहीं कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज में है, और मोमिन की इज्जत लोगों के माल से बेनियाज हो जाने में है। कि लोगों की तरफ से मिलने वाला कोई भी माल है, कोई भी ये है, उससे बेनियाज हो जाए, उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर नज़र नहीं होनी चाहिए। और मोमिन की शराफत किस में? तहज्जुद की नमाज में। इस पहले फैक्ट्स ऑफ लाइफ बयान किए कि जितना मर्जी आप जिंदा रह लें, आपको एक दिन तो मरना है। जिससे जितनी चाहे मोहब्बत कर लें, एक दिन उससे जुदा होना, मगर कौन सी चीज़ें रह जाने वाली हैं? नमाज, और वो भी तहज्जुद की नमाज। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में अपने बाबरकत और बुलंद कदर परवरदिगार को बेहतरीन सूरत में देखा, बस उसने कहा, यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा, ए मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस बात पर बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा पूछा, मैंने हर बार यही जवाब दिया। फिर मैंने अल्लाह ताला को देखा कि उसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा है, यहाँ तक कि मैंने अल्लाह ताला की उंगलियों की ठंडक अपनी छाती के दरमियान महसूस की। अब अल्लाह ताला का जो हाथ है या उंगलियाँ, दरअसल अल्लाह ताला की ये सिफ़ात हैं, इनको हम इमेजिन नहीं कर सकते, ना हम उनकी कैफियत जान सकते और ना ही हम उनको तशबीह दे सकते हैं कि जैसे इंसानों के हाथ होते हैं, इंसानों की उंगलियाँ होती हैं वैसे नहीं। बस हमें जिस तरह से बताया गया है हमें इसी पे यकीन है। फिर आपने फरमाया कि फिर मेरे लिए हर चीज़ जाहिर हो गई और मैंने सबको पहचान लिया। फिर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा, मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? जो मुकर्रब फरिश्ते हैं ना, वो किस बात पे एक दूसरे से बहस कर रहे हैं? तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात वाज़े हो चुकी थी ना, कि फरमा रहे ना कि मेरे ऊपर सारी चीज़ मैंने पहचान ली, मेरे ऊपर वाज़े हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया गुनाहों का कफ़ारा बनने वाली नेकियों के बारे में। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो क्या हैं जो आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं, वो क्या हैं? मैंने कहा, नमाज़े बा जमात के लिए पैदल चलकर जाना और नमाज के बाद मस्जिदों में बैठना और मुशक्कत, यानी जब मुश्किल हो, जैसे मिसाल के तौर पे सर्दी है या कोई बीमारी है, उस वक़्त पूरा वज़ू करना, जब आपका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, जब आपने मेकअप लगाए हुए हैं, जब आप पूरी तैयार हुई हुई हैं, अब कैसे वज़ू करूँ, हाय मेरा तो मेकअप ही धुल जाएगा, ये भी तो मुशक्कत ही है ना। तो मुशक्कत के वक्त में पूरा वज़ू करना, ये कफ़ारा बन जाते हैं आपके गुनाहों का कफ़ारा, ये नेक अमल बनते हैं। तो उस वक़्त आपको मेकअप ज़्यादा अजीज़ होता है, हालांकि ये नहीं पता कि इस वक़्त मेरा वज़ू करना मेरे कई गुनाहों को मिटा देगा। ये गुनाहों का कफ़ारा बनने वाली नेकियां हैं, नमाज़े बाजमात के लिए चल के जाना, नमाज के बाद में मस्जिदों में बैठे रहना, नमाज़ पढ़ भी ली है तो बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और मुशक्क़त के वक्त पूरा वज़ू करना। तो इस हदीस को याद कर लिया करें, जब भी आप फुल मेकअप के साथ हों, जब भी आपका दिल ना चाह रहा हो वज़ू करने का, जब भी आप कोई मुश्किल महसूस करें, जब भी ठंड लग रही हो, जब भी पानी गर्म ना आ रहा हो, जब कोई बीमारी हो, जब उठना मुश्किल हो, जब सुस्ती आ रही हो, उन सारे वक्तों में आप इस हदीस को याद कर लिया करें। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, और किस चीज़ में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, दर्जात की बुलंदी के बारे में। अल्लाह ताला ने पूछा, वो किन चीज़ों में है? मैंने कहा, नंबर 1, लोगों को खाना खिलाने में। तो इन 10 दिनों में एहतमाम कर सकते हैं आप लोगों को खाना खिलाने का, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इफ्तारी करा सकती हैं वगैरह, तो लोगों को खाना खिलाने का। नंबर 2, नरम बात करने का। तो इन 10 दिनों में आप जो बात करें नरमी से करें। देखिए, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना ये भी एक नेकी है। हर नेकी करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हर गुनाह से बचना फ़र्ज़ है। क्या मैंने कहा? हर नेकी करना जो है, जितनी भी मैंने आपको नेकियां बताई हैं, अभी मैंने आपको 10 दिनों की बताई हैं, रोज़ा रखना, वो ये तकबीरात बुलंद करना, ये सब चीज़ें फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन गुनाहों को छोड़ना फ़र्ज़ है। तो इस ज़ुबान की जो हिफाजत है, ये भी इन दिनों में करनी है। अगर ज़ुबान की हिफाजत ना की, तो आपकी जो नेकियां हैं उनको ये चाट जाएंगी ज़ुबान के गुनाह, और फिर आप एंड में क्या रह गए? 0। देखिए, गुनाह क्या है? 0 से मल्टीप्लिकेशन है। जब आप गुनाह करते हैं तो फिर अपनी नेकी को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने बैलेंस कर दिया ना, एक नेकी की और साथ ही एक गुनाह कर लिया, तो मीज़ान में तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। क्या पाया आपने? कुछ भी नहीं, ना कुछ खोया ना पाया। तो लोगों को खाना खिलाना, नंबर टू नरम बात करना, और नंबर थ्री रात को नमाज पढ़ने में, जब लोग सो रहे हो उस वक़्त नमाज पढ़ने में दर्जात की बुलंदी है। आप चाहते हैं आप ऊपर के दर्जात में जाएं, जन्नत में भी आपको हाईएस्ट रैंक्स मिले, तो ये तीन काम किया करें, लोगों को खाना खिलाया करें। और खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है आप लोगों की दावत करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा अदले का बदला हो जाता है, ज़रा एहसान की बात हो जाती है कि जी हमने बुलाया, इनवाइट किया है, अब ये हमें कब बुला रहे हैं, अब इसने मुझे दो दफ़ा बुलाया, अब मैं भी इसको बुला लूँ। कोई बीमार हो उसके घर खाना पहुँचा दें, क्योंकि कोई ज़रूरतमंद हो, इस वक्त किसी को ज़रूरत है, आपने उसको खाना खिला दिया। ऐसी नेकियों में ज़रा आगे बढ़ के, जिस वक्त कोई किसी को ज़रूरत भी है, आप कोई अपने घर में भी बना सकता है, लेकिन आप उसको बुला रही हैं, ठीक है दावत करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादा उससे भी बेहतर है जब दूसरा बंदा मजबूर है, उसको ज़रूरत है, वो बीमार है या उसकी कोई और ऐसी मजबूरी है कि वो इस वक्त खाना नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पे किसी के का इम्तिहान है, या किसी की ऐसी कोई बच्चा बीमार हो गया है, या अस्पताल में वो पड़ा हुआ है, अब घर वालों के लिए खाने पीने की मुश्किल हुई हुई है, तो या कोई सफ़र पे गया हुआ है, उसके पीछे उसके घर वालों का ख्याल रखना और उनको खाना पहुंचा देना, तो उस वक़्त तो वो ज़रूरतमंद भी हैं और खाने की भी उनको दिक्कत हो रही है। तो आपने ये दोनों नेकियां कमा ली, और आपने एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी की और एक बीमार की दुआ भी ले ली। इसलिए ऐसी चीज़ों में ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और फिर इसका कोई ऐसा एहसान भी नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपने लिए जो चाहो दुआ करो, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैंने ये दुआ की कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकियों के करने का और बुराइयों के छोड़ने का, ये हम भी दुआ किया करें। ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ नेकियों के करने का और बुराइयों के छोड़ने का और मिस्कीनों के साथ मोहब्बत करने का, क्योंकि इससे भी दिल की सख्ती दूर होती है ना, मिस्कीन के साथ मोहब्बत करने से। और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, और अगर तेरा किसी कौम को आजमाइश में डालने का इरादा हो तो मुझे आजमाइश से बचा कर मौत दे देना, और मैं तुझसे तेरी और हर उस शख्स की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता हूँ, कि अल्लाह मुझे उन सब लोगों से मोहब्बत हो जाए जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं तुझसे वो अमल करने की तौफीक मांगता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब करते हैं, मेरे से हर वो अमल हो जो मुझे तेरी मोहब्बत में करीब कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ये ख्वाब हक है, यानी सच है, बस इसको याद रखो और दूसरे लोगों को भी ये ख्वाब सुनाओ। अब मैंने आपको तो ये ख्वाब सुना दिया है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आगे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के ऊपर अमल करते हुए और लोगों को भी उनका ये ख्वाब सुनाएंगे? तो आपने एक उनका कहना भी पूरा कर दिया कि मेरे नबी का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उस 1400 साल पहले ये ताकीद की थी कि जिसने मेरा ये ख्वाब सुन लिया वो दूसरे लोगों को भी सुनाए, तो मैं हूँ सुनाने वाली, मैं आगे बढ़ के उनकी इस बात के ऊपर अमल करूँ। उन्होंने मुझे कहा है, जैसे आपकी माँ या आपका कोई प्यारा आपको कुछ कहता है ना कि देखो मैंने तुम्हें ये बात की है और तुम इस बात को इस तरह मेरे कहने को इस तरह मानो, तो आप कहते हैं ये मेरी माँ की बात है, मैं अपनी माँ की बात ज़रूर मानूंगी। तो ये तो माँ से भी बढ़ के, जो हमारे माँ बाप से भी बढ़ के हमारे खैर ख्वाह और जिनका एहसान हमारे माँ बाप से भी बढ़ के हम पे है, तो वो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने कह दिया कि मेरा ये ख्वाब और लोगों को सुनाओ, तो हम सब ने सुनाना है इंशाल्लाह, ठीक है? तो इस ख्वाब को जहन में रखें, इसको याद कर लें, और आप जहाँ पर भी जाएँ वहाँ पे लोगों में आप बैठी हो, कोई आपको कहे, आप लोगों को पता होता है कि आप कुरान पाक माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई कहे कि कोई बात हमें अच्छी बताएं, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्वाब सुना दिया करें, और ये भी सुना दिया करें कि इसको आपने भी याद रखना है और आपने भी आगे इसको दूसरे लोगों को भी सुनाना है। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है और ये सही रिवायत से आता है, ये ख्वाब हमें पता चलता है। अब बस दो और बातें रह गई हैं इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद हम ये मुकम्मल कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह की हिफाज़त में है, बस अल्लाह ताला तुमसे अपनी हिफाज़त के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा ना करे, इसलिए कि जिससे वो मुतालबा करेगा यकीनन इसको अपनी गिरफ्त में लेकर मुँह के बल जहन्नुम में फेंक देगा। क्या मतलब है इसका? यानी जो नमाज नहीं पढ़ता वो गोया ये कहता है कि उसे अल्लाह की हिफाजत नहीं चाहिए। तो जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। अगली रिवायत है हज़रत ने अब्बास से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना काबा के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरी इमामत की, बस मुझे जोहर की नमाज़ पढ़ाई और मुझे असर की नमाज़ पढ़ाई और मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ाई और मुझे इशा की नमाज़ पढ़ाई और मुझे फजर की नमाज़ पढ़ाई। क्या मतलब है इसका कि नमाज का दर्जा इतना बुलंद है, इसकी अहमियत अल्लाह ताला के नज़दीक इतनी ज़्यादा है कि इसको सिखाने के लिए कौन आए? जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम देने के लिए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से नमाज पूरी की पूरी सीख लें और फिर आगे अपनी उम्मत को सिखाएं। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि तुम इसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने सिखाई हुई है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। और इससे नमाज की टाइमिंग भी सिखानी मकसूद थी कि किस टाइम पे पढ़नी है। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।